ध्यानत विरांदस्य ध्यानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाभजन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे रवि गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्री संत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों पुष्पांजलि प्रणाम करते हुए आज बड़ी प्रसन्नता के साथ में मैं ये कह रहा हूं। सिंगापुर में ऐसे प्रतीत हुआ मानो मैं अपने घर वृंदावन में पहुंच गया। यहां डेढ़ दो महीने के बाद में मुझे हिंदी बोलने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ। कोयल की कूक पहली बार यहां सुना जो और कहीं नहीं सुनी गई। यहां आते ही यहां इस मंदिर में पहुंचा मुझे ऐसे लगा जैसे श्रीरंगम मंदिर में मैं उपस्थित हुआ। When I came here, I saw that it is श्रीरंगम टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। I have done so many times in southern India. So I know Ramanujacharya Vaishnav. There are four cults of Vaishnav: Sri Sampradaya Ramanuj, Madhva, Vishnu Swami Nimbaditya. We honor all. Like a family of Krishna. तो मैं यहां आकर के पहली बार अपने भारत के लोगों से भी मिला जो और कहीं नहीं मिले। तो यहां पर हम मिले, हिंदी में बातचीत कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं यहां गुप्ता जी के घर में करीब एक सप्ताह रहूंगा और मैंने वहां 7 दिन में श्रीमद् भागवत, एक तरह से सप्ताही समझिए, श्रीमद् भागवत पर विशेष व्याख्यान दूंगा। एक तरह से श्रीमद् भागवत का सार 7 दिनों में कहूंगा। वी आर नाउ स्टेइंग इन द अबोड ऑफ श्री गुप्ता जी वेयर वी विल बी फॉर 7 डेज 6 डेज मोर। I wanted to give a sar and substance of Srimad Bhagavatam in 6 days. Daily from 6 to 8, Sankirtan in Srimad Bhagavatam. So I think that it is better to deal with Gita. आज गीता में हम संक्षेप में गीता जी के ऊपर में थोड़ा सा हम बोल करके और शाम को वहां पर श्रीमद् भागवत में हम बतलाएंगे। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं समझता हूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलने से मेरा समय बर्बाद होगा और मैं थक भी जाऊंगा। इसलिए पीछे से हिंदी में से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा। दे विल ट्रांसलेट माई हिंदी क्लासेस इन इंग्लिश आफ्टर बिकॉज आई कैनॉट स्पीक टू टाइम्स सेम थिंग। I will be tired. So I am speaking in English. So excuse me. गीता हमारे वैदिक संस्कृति का पहला पुस्तक है। गीता भी उपनिषद है, वेद का ही अंश है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं और लाखों वर्ष पहले सूर्य उन्होंने इस ज्ञान को दिया था। गीता कोई पुस्तक नहीं है, यह दिव्य ज्ञान है, भगवत ज्ञान है। इस ज्ञान को लाभ करने से मनुष्य जीवन में सुखी और शांत रह सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य प्राणी नहीं है, पेड़ पौधे वृक्ष लता गुल्म लता, जो सुख और शांति नहीं चाहते। सभी सुख शांति चाहते और सुख शांति के लिए ही सारे प्रयत्न कर रहे हैं। वट एवर वी डू डू फॉर हैप्पीनेस, किंतु इतना करने पर भी बचपन से लेकर के और अंत तक सुख और शांति के लिए कार्य करने पर भी, चाहे कोई भी प्राणी हो, इसी के लिए काम करता है। कर्मण्यमानानं दुःखतैः सुखायच, भागवत गीता उपनिषद वेद शास्त्र में सभी में सभी सुख और शांति के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कि क्यों? क्योंकि वे भगवान के अंश हैं। शरीर भगवान का अंश नहीं, बल्कि इसके अंदर में जो जीवात्मा है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, उसका अंश है। ममई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, गीता में भी ऐसा ही कहा गया। और तुलसीदास जी ने भी बड़े सरल शब्दों में कहा है, शायद तुलसीदास को आप लोग जानते हो, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इले जीव भगवान का अंश है और नित्य भगवान का सेवक है, किंतु भगवान की सेवा छोड़ने से वह माया के द्वारा ग्रसित हो जाता है और इस संसार में जेल खाने में गिर जाता है। भगवान के सेवा में ही और सुख सुख और शांति है। इन दिस सर्विस ऑफ कृष्ण भगवान वी कैन बी हैप्पी, वी वेर हैप्पी, वी विल हैप्पी। किंतु भगवान की सेवा छोड़ करके अपने सुख और शांति के लिए जब जीव कर्म करने लगा, माया ने उसे संसार रूपी कारागार में बंद कर दिया और विभिन्न प्रकार की लाखों प्रकार की योनियों में उसे इधर उधर भ्रमण कराने लगा। कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़ गुल्म लता, सब जगह शांति और सुख खोजते 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 हम लोग हैरान हो गए। रिसर्च happiness and peace of mind everywhere, being in tree, creepers, wild beasts, even demigods, men here, there, किंतु we cannot be happy, could not be. हम लोग शांति नहीं पा सके, सुख नहीं मिला। इसलिए सुख नहीं मिला कि भगवान के सेवा में ही सुख है, क्योंकि हम नित्य स्वरूप से उनके सेवक हैं। इसीलिए गीता में इस चीज को दिखलाने के लिए प्रारंभ से उन्होंने बतलाया, गीता में एक भूमिका बांधी गई, लाइक ए स्टोरी इट वॉज टोल्ड, वेरी हाई क्लास ऑफ थॉट्स। वो क्या? अर्जुन कृष्ण को महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाने के लिए कहा। जब वो रथ को बीच में ले गए, अर्जुन ने कहा कि मैं किससे लड़ने जा रहा? हमारे पितामह भीष्म जी, हमारे पालन पोषण करने वाले हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी, हमारा अपना भैया दुर्योधन और उसके 100 भाई, और जितने भी हैं हमारे सगे संबंधी रिलेशन, मामा भाई ताऊ, ये सभी युद्ध करने के लिए खड़े हैं, और इधर में हमारे स्वगे संबंधी। किस लिए? थोड़े से राज्य के लिए, नहीं मैं युद्ध नहीं करता, इन लोगों को मार करके मैं ये युद्ध ले, मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा, ये खून से सना हुआ। इसलिए धनुष को रख दिया, विषादग्रस्त हो गए। कृष्ण कार्य माक्लैबम, आकुल व्याकुल मत हो, स्थिर हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैं इनको मारने वाला हूं, ये हमें मारने वाले हैं, मत सोचो। मैं करने वाला हूं ये मत सोचो। कितने आदमी पहले हो गए और हो गए और होंगे, इस चीज को समझो। क्लैबम मास पार्थ नुपत्य थी, हमारे लिए उचित नहीं उठ करके खड़े हो, मैं जैसा कर रहा हूं कहो करो, मैं कैसे इनसे लड़ू, मैं नहीं लड़ू। तब उन्होंने दिव्य ज्ञान देना, युद्ध ये राज्य के लिए नहीं हो रहा, धर्म के लिए हो रहा। क्यों हो रहा? धर्म के लिए, मेरा जन्म ही धर्म के लिए है। परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि।
धर्म की रक्षा करने के लिए आता। इस समय सारे जितने राजा हैं यहाँ वो असुर भावापन्न हो गए हैं, असुर चिंता सुख के हो गए, वो लोग शरीर को ही मैं मान करके चल रहे और इसी के लिए लड़ रहे हैं, इसी के लिए झगड़ रहे हैं। उस समय में दुर्योधन इत्यादि कुछ लोग थे, आजकल सारा विश्व शरीर को मैं मान करके इसी को सुख और शांति देने के लिए चेष्टा कर रहा है, भगवान के लिए नहीं, अपने आत्मा के सुख के लिए, शांति के लिए नहीं। हम लोगों के लिए कृष्ण ने उपनिषदों का सार गीता के रूप में देने के लिए वो वहां पर आए। साधारण तरह से हम लोग समझते हैं कि मैं शरीर हूं, इसको खिलाना पिलाना सुख से रखना ही हमारा कर्तव्य है, किंतु कृष्ण कहते हैं कि ये भूल है। शरीर के मरने से भी आत्मा नहीं मरती, इस चीज को अच्छी तरह से समझो। जैसे मैं नित्य हूं सनातन हूं, वैसे जीवात्मा भी नित्य और सनातन है, किंतु हमारी सेवा भूलने से वो संसार में गिरा हुआ है। पंसार से जीर्णानी जथा विहाय नमान गृहणाती नरो प्राणी, जैसे वस्त्र मैले और पुराने हो जाते हैं, इसको छोड़ करके नए वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही इसके अंदर में आत्मा जो भगवान का अंश है, अपने कर्म रूपी कपड़े, कर्म से यह शरीर बना हुआ है, जैसे हमने पूर्व पूर्व जन्मों में कर्म किया है उसी के अनुरूप में हमारा यह शरीर हुआ। कर्म का फल जब समाप्त हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, शरीर को आत्मा छोड़ कहां जाएगी उससे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए शरीर के काटने से ही मरने से ही आत्मा नहीं मरती, अजर अमर शाश्वत है। ये चीज को अर्जुन तुम समझो। ये आजकल के क्षत्रिय लोग एक तरह से शरीर के धर्म में प्रवेश कर आत्मा के धर्म को भूल चुके हैं, आत्मा के लिए तरीक भी कोई काम नहीं करता। जो आत्मा हम इसमें समझे, ये आत्मा क्या चीज है, इसलिए कृष्ण ने ऐसा किया, दूसरों का संहार कर उस आत्म धर्म की प्रतिष्ठा की जाए। इसलिए कहा देखो तुम युद्ध नहीं कर रहा, किंतु तुम कहा तुम्हारा जो स्वभाव है युद्ध कराएगा ही, अवश्य तुम्हारा नेचर तुमको युद्ध कराएगा, स्वभाव कराएगा। बिना जो कहता है जो कर्म नहीं करता वो मिथ्यावादी, मिथ्यावादी सब उच्चते इसलिए ऐसा करो मैं जैसा कहता हूं। जज्ञार्थात कर्मणो लोकोऽयम् अन्यत्र कर्म बन्धनः, यज्ञ के लिए कहा। यज्ञ किसको कहते हैं? कोई भी काम करो इसलिए करो कि भगवान प्रसन्न हो। रसोई बना रहे हैं कोई, इसलिए ठाकुर जी खाएंगे प्रसाद के रूप में। हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं शरीर धारण करने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए, किंतु जीवन का निर्वाह किस लिए? यही परमात्मा हित है। हम यदि पूछें अजय भाई खाते किस लिए हो? खाते हैं जीवन धारण करने के लिए, बच्चों का परिवर्ष करने के लिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। अजय भाई जीना किस लिए चाहते हो? किस लिए जीना? फिर खाने के लिए, भोग करने के लिए? इन साइक्लिक और साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे नहीं। ये सीखो किस लिए जीवन, जीवित किस लिए रहना चाहते? क्योंकि आत्मा ही अजर अमर नित्य है। इसलिए कि हम भगवान को जान करके, आत्मा को जान करके, इस प्रकृति से अतीत होकर के जन्म मरण से भगवान की नित्य सेवा में हम पहुंचेंगे। जहां पर कोई जरा मृत्यु दुख क्लेश बुढ़ापा यह सब कुछ नहीं है, उस जगत का कोटि कोटि भाग में से एक भाग यह जगत है जेल खाना। मैं समझता हूं कि सिंगापुर में कोई जेल खाना है कि नहीं है, है बहुत कम ही उसमें कैदी हूं कि है कुछ हो सकता है, किंतु थोड़ी सी जगह में जेल खाना होगा। वैसे ही उस जगत का ये जेल खाना है। जो लोग वहां पर दोष करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते, उनको माया इस जेल खाने में पीसने के लिए आती है, इसलिए सुख शांति इस जगत में नहीं हो सकता, ये समझ रखो। हो सकता है कब? इस जेल खाने में रहते हुए भी यदि भगवान की सेवा करोगे, भगवान को जानोगे, आत्मा को जानोगे, तो अपने आप सुखी रह सकते, अन्यथा नहीं, कभी संभव पर नहीं है। इसलिए भगवान के लिए जो कुछ करते हो, जत करोशी जदशनाशी जज्जुहोशी, जो कुछ भी अमन करते हो, जो चलते हो फिरते हो करते हो, सब भगवान के लिए करो। और इसी मनुष्य जन्म में ही भगवान का ज्ञान लाभ कर सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाओ, फिर इसमें मत आओ, जेल खाने में मत घुसो। ऐसा कोई आदमी है? गीता में पूछते हैं जो बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, यदि पहले ही मर गए तो बूढ़ा नहीं हो सकते, ये बात तो ठीक है, किंतु यदि जीवित रहे तो जरूर बूढ़ा होना होगा, दांत टूट जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, और अंत में अपने आप एक ग्लास पानी भी उठा करके नहीं पी सकोगे। इसलिए जीवन के रहते रहते जब तक कि शरीर में ताकत है तब तक कुछ काम करना। कहते हैं कि चार प्रकार के लोग हमें जानते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतनो अर्जुन, जिनकी कुछ सुकृति पूर्व जन्म की है। सुकृति मैंने क्या? भगवत संबंधी जिन्होंने कुछ कार्य किया है। भगवत संबंधी क्या? एक पक्षी डाल पर बैठा था, किसी ने गोली मार दी, वो गिर पड़ा और बेहोश होकर के मंदिर की परिक्रमा कर ली, ये सुकृति। यदि आपने एक मंदिर में जाकर के कुछ दान दिया और उस दान से घी लेकर और बत्ती ठाकुर जी को जलाई गई, ये सुकृति। यहां आकर के भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, ये सुकृति। संसारिक पुण्य जनक कार्य नहीं, भगवत संबंधी हो और भक्तों के संबंधी हो। जमुना जी गए, गंगा जी गए, वहां का पानी धारण किया, पानी लिया, ये सुकृति सब है। ऐसी सुकृति होने के बाद में, साधु संग मिलने के बाद में ही ये सब चीजें आएंगी, अन्यथा नहीं आएगा। अपनी बुद्धि विद्या बल से भगवान को नहीं जाना जा सकता। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हो भगवान के लिए करो, करना तो है ही है, बिना किए रह नहीं सकते, तो क्यों ना अच्छे काम करो, भगवान के लिए करो कुछ, और भगवान का उपभोग देकर के अपने उसके उच्छिष्ट के रूप में ग्रहण करो, प्रसाद के रूप में, माया दूर हो जाएगी। इसलिए कहते हैं यदि किसी की सुकृति है तो भगवान को वो पा सकता है। कौन कौन? आर्त, जिज्ञासु,
अर्थार्थी, ज्ञानी
और ज्ञानी, जिनको रुपए पैसे की बहुत आवश्यकता है कर रहा पैसा नहीं मिल रहा, अर्थार्थी जैसे ध्रुव जी, यदि पूर्व जन्म की सुकृति है तो भगवान का भजन करके उसको पैसे राज्य इत्यादि अपने आप मिलेगा। ज्ञानी जो ज्ञान लाभ करना, जैसे सुखदेव गोस्वामी, सनक सनंदन, सनत कुमार, पूर्व जन्म की सुकृति होने के वजह से ज्ञान के द्वारा उन्होंने भगवान, आतुर द्रौपदी आतुर होकर के कृष्ण को पुकारी, कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं रहा, इसको कहते हैं आर्त। और सनक सनंदन इत्यादि जो हैं, ये हैं जिज्ञासु, पूर्व जन्म की सुकृति होने पर होगा, नहीं तो दिन रात संसार के झमेले में पड़े रहेंगे। इनमें भक्तों का संग होने से ये भक्ति की तरफ नहीं चल सकते। इसलिए बतलाया तीन मार्ग हैं, एक ज्ञान कर्म, एक ज्ञान एक योग। गीता में इन तीनों की व्याख्या की गई, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जो कर्म भगवान और जीव का योग करते हैं, जिसके जिन कर्मों के द्वारा हम भगवान से हमारा योग होता है, उनको कर्म योग कहते हैं, और सब कर्मों को नहीं कहते। जैसे मैं जा रहा हूं, इसमें कर्म नहीं है, मैं करता और क्रिया है जाना, कर्म नहीं है इसमें। मैं आम खा रहा हूं, इसमें आम कर्म हो गया। मैं अपने लिए जो कुछ करता हूं तब ये कर्म होगा, और जब भगवान के लिए कर्म करेंगे तो वो कर्म योग होगा। जैसे आपने एक फल लिया, ठाकुर मंदिर में भगवान को दे दिया, ये आपका कर्म योग होगा। ज्ञान योग, भगवान का तत्व तो ज्ञान इत्यादि जानना, जिन ज्ञान से भगवान का योग होता है जीव का, और संसार से पार करके भगवत धाम में भगवान की नित्य सेवा को पाता है, उसको कहते हैं ज्ञान योग। जैसे कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या है, मैं क्या हूं, किस लिए जगत में आया। इसके बाद में होता है भक्ति योग, जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं, तो इसका नाम है भक्ति योग। इनमें कर्म योग पहला 6 अध्याय, ज्ञान योग अंतिम 6 अध्याय, बीच में है भक्ति योग। जैसे एक संदूक में कोई रत्न रहता है, बीच में निचला पेंदा और ऊपर का ढक्कन, और उसके बीच में ये भक्ति योग है। इसलिए कहा योगियों में योगी होना ही उचित है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धामान भजते योमान समे युक्त तमो मतः। योगी बहुत हैं, कर्मी योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं। योगी मैंने क्या, योग करना, योग मना है तो दो चीजों को मिलाना, जिसके द्वारा जीव और भगवान का मिलन होता है, उसको कहते हैं योग। आजकल संसार में जो योग चल रहा है ये योग नहीं है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम इत्यादि करते हैं खड़े होकर के, चाइनी लोग खड़े होकर के करते हैं, हमारे देश में बैठ करके योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए, उसे परमात्मा का योग नहीं होता। यदि उसमें भगवान का ध्यान करते तो वो योग हो जाता। इसलिए अपने चित्त को विषयों से हटाने के लिए नाइति 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 करते हैं, उसको योग कहते हैं गीता, गीता कहते कि ये योग नहीं है। जो किसको कहते हैं, जिस क्रिया के द्वारा भगवान के साथ में जीव का योग हो उसको कहते हैं योग। इसलिए उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शरीर और मन के जितने भी धर्म हैं इनको छोड़ो, क्या करो, आत्मा का जो धर्म है हमारा शरणागत हो, तुम अपने आप आत्मा को जान जाएगा, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ नहीं जानता, आपके चरणों में हमने न्योछावर कर दिया। दिस इज द बेस्ट वे टू नो कृष्ण। आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया बहुनाशुते। आत्मा को कोई पढ़ करके शास्त्र नहीं जान सकता, सुन करके भी नहीं जान सकता, बुद्धि से नहीं जान सकता, विद्या से नहीं जान सकता, कैसे जानेगा? यदि वो आत्मसमर्पण करता है, भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं, तभी हो सकता है। ऐसे कभी भी संभव नहीं। इसलिए ऐसा प्रयास मत करो। गीता में अर्जुन जैसे करे वैसे चलो। मन मना भव मद भक्तो मद यादि मांग नमस्कुरु माम एव जीव इष्यसि
प्रपद्यं
माम एव इष्यसि प्रतिजानो प्रति द्योष्मि। तुम हमारे प्रिय अर्जुन सखा हो, इसलिए तुमको मैं ये निगूढ़ बातें बतला। क्या? मन मना भव, तुम मेरे बन, चित्त को हमारे अंदर में लगाओ। कैसे लगाएगा? भगवान की कथाओं को सुन करके, कृष्ण की मनोहारी लीलाओं को सुन करके चित्त को उनमें लगाया जाए। कैसे लगाया जाए? जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, बड़े अद्भुत वेश, अधरों पर मुरली है, हजारों हजारों गायें हैं चल रही हैं, या बछड़े चल रहे हैं, सखाएं हैं उनके साथ में। उन्होंने देखा कि कोई अभी नई ब्याह करके ब्रज में आई है नवेली, कृष्ण की तरफ में देख रही है, ऐसे निविष्ट होकर के देख रही है जो सबके मना करने पर भी नहीं मानी, और दरवाजे पर आकर के वो देख रहे। कृष्ण ने अपने बछड़े को कुछ छेड़ा और ऐसे छेड़ा कि वो ठीक वहीं पर आया। उन्होंने बंसी से उसके फोड़ी में लगा दी बंसी और उसके तरफ में मुस्कुराते हुए देख करके चल दिए। गोपियों उस गोपी का चित्त उन्होंने हरण कर, कृष्ण के रूप माधुर्य का चिंतन करते 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 बेसुध वहीं पर खड़ी रही। उसके सास ने कहा अरे क्या खड़ी, कृष्ण तो चले गए, पकड़ करके घर में ले आए। उसने कहा जी जरा होश लाने के लिए कहा जरा दधि का मंथन करो तो हाथ में, कहा जी जाओ घर से ले आओ दधि का भांड। और दधि का भांड लाने गई, ले आई और उसको मंथन करने लगी, किंतु वो दधि का भांड नहीं था, वो उसमें सरसों राई रखी थी, राई कोई मथ रही। उसे होश नहीं कि राई है कि दही है। थोड़ी देर के बाद में उसकी सास फिर लौट करके आई, अरे ये क्या कर रही है, पागल हो गई, अच्छा एक बात करो पानी लाने जाओ। उसका बच्चा, एक बच्चा उसके हाथ में दे दिया, हाथ में रस्सी दे दी। आप लोग जानते हैं कि ब्रज में कैसे पानी कुएं से खींच करके लाते हैं, रस्सी भी दे दी, डोल दे दी और घड़े पर घड़े पर घड़े दो तीन घड़े रख दिए, जाओ कुएं से पानी भर ला। वो इन सब चीजों को लेकर के कुएं में गई, कुएं पर घड़ों का रख दिया, बच्चे को भी रख दिया और रस्सी की फांस घड़े कलश में न लगा करके वो बच्चे के गले में ही लगा दी। होश नहीं, गले में रस्सी लगा करके और जो ही कुएं में डालना चाह तो किसी ने चिल्ला करके कहा अरे देखो तो इसको भूत लग गया, नहीं तो अपने बच्चे को गले में रस्सी लगा करके और कुएं में डाल रही है। किसी जो जानने वाली थी गोपियों का ने कहा इसे भूत नहीं नंद का पूत लगा, नंद का पूत माने कृष्ण ही इसके हृदय में समा करके इसके चित्त को चोरी कर लिया, इसलिए होश नहीं। ये मन मना भाव का उदाहरण। अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध भूमि में मैं मना कैसे हो सकता हूं, ये मेरे लिए संभव पर नहीं है। अभी लड़ूं या अपने चित्त को लगाऊं, यदि नहीं कर सकता है तो हमारे लिए मन मना भाव मत भक्तो, हमारी भक्ति करो। क्या करो? भक्ति किसको कहते हैं? कृष्ण को पाने के लिए, केवल मात्र कृष्ण को खुश करने के लिए ही जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो नौ प्रकार की भक्ति है इसे करते हैं तो इसको कहते हैं भक्ति। तुमने कहा कि ये मेरे लिए संभव कहां है इस युद्ध भूमि में, और कोई उपाय बतलाइए सहज। अच्छा और सहज बतलाऊं? मतिया जी हमारा पूजन करो। तो यहां पर कहां घंटा और ये सब चीजें कहां है जो मैं पूजन करूं? आज बस एक बार तू हमें प्रणाम करके युद्ध करो, युद्ध भूमि एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाला इस जगत में फिर नहीं आता, नेवर रिटर्न्स इन दिस वर्ल्ड, कभी नहीं आता। यदि आप लोगों को इतना काम है, फुर्सत नहीं है, तो एक बार सवेरे प्रणाम करके भी अपने काम में जाइए और फिर आकर के प्रणाम करें। एक बार प्रणाम करने वाला 10,000 और समेत यज्ञ करने से भी अधिक बड़ा है। कृष्ण अर्जुन ने कहा जी ठीक है तब ऐसा नहीं करो। तब उन्होंने कहा सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम ब्रज, एकमात्र हमारी शरण है। गीता के ये जो उपदेश दिए गए इसलिए ये किए गए, किसी प्रकार से हम धीरे 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 अपने मन को एकाग्र करके भगवान के तरफ में लाएं, किंतु कोटि जन्म लग जाएगा, साधारण चीजें नहीं है। इसलिए भागवत की तरफ में आई, भागवत कहते हैं कि इतने करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करो? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम वही केवल कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते। तुम जिस स्थान में जैसे हो, दुराचारी हो, पापी हो, अच्छे हो, बुरे हो, भले हो, क्या करो? बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम राम।
नहीं आता है केवल कृष्ण कृष्ण बोलो, ये भी नहीं आता है तो राधे राधे कहो, नहीं आता है राम राम कहो। तुमको जो भगवान का नाम तुमको अच्छा लगता है, नारायण इत्यादि कोई भी नाम करो तो भगवान का, चलते फिरते उठते बैठते छींकते फिसलते हुए भी भगवान का नाम करो, इसमें कोई चीज की योग इत्यादि की भी जरूरत नहीं है जो गीता ने कहा। अब इससे सरल क्या हो सकता है? इसलिए ये सबसे गीता का भी सार ये है। अजामिल नाम का एक महादुराचारी व्यक्ति था, बचपन में माता पिता की सेवा करता था, ब्राह्मण घर का लड़का, वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाला, अपने पिताजी की सेवा के लिए वन में जंगल में हवन के लिए लकड़ी लाने के लिए गया सूखा। किंतु वहां एक दुराचारी पुरुष को एक दुराचारिणी स्त्री के साथ में देख करके उसका मन चंचल हो गया, क्षुब्ध हो गया। बहुत चेष्टा की उसने अपने मन को शांत करने के लिए, नहीं कर सका। वायु को जीत लेना सहज है, सहज तो नहीं है, 5 मिनट का, 1 मिनट अभी सांस मुंह खोल ये बंद करके देखो तो अभी मरे या नहीं मरे, 1 मिनट भी नहीं रख सकते। तो ऐसे वायु का जीतना हो सकता है संभव, किंतु मन का जीतना बड़ा भारी कठिन है, वायु से भी अत्यंत कठिन है, ये जीतना कैसे संभव? इसलिए नहीं जीत सका, अपने घर को बेचकर, अपनी पत्नी को छोड़कर के, बच्चों को छोड़कर, उस दुराचारिणी स्त्री के पास में पहुंचकर सारा कुछ उसके पास में दे दिया और उसे प्रेम करने लगा। थोड़ी देर के बाद में एकदम सब कुछ, अपना घर कुछ एकदम लुटा दिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, बच्चों को, और उसके साथ में मदिरा पान करता, डकैती करता, हत्या करता, ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं किया। उसे 8 बच्चे पैदा हुए, अंतिम बच्चा 80 वर्ष के उम्र के बाद में हुआ, उसका नाम नारायण किसी प्रकार से रख दिया। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं था जो नहीं किया, किंतु अंत में न जाने किस हिंदू संस्कृति के अनुसार में उसने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। उसका फल क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में उसकी मृत्यु का समय आया और वो जब मर रहा था उसने देखा आज भयंकर जम के दूत उसके सामने आए, डर गया। डर करके जो सबसे प्रिय चीज होती है उसी का नाम आता है, बच्चे की तरफ में उसकी नजर आई, देखिए छोटा सा बच्चा अभी बस नारायण नारायण डर के मारे वही कह रहा। हुआ क्या है, नारायण जो ही कहते हैं चार दूत भगवान के नारायण वहां से ऊपर आए, नारायण के दूत और उधर जम के दूत दोनों में वार्तालाप होने लगा और इसकी आत्मा को वो निकालने के लिए चेष्टा करने लगे जम के दूत। नारायण के दूतों ने कहा जी क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा जैसे बड़ा भाई पापी अपने पिता की सेवा छोड़ करके स्त्री की सेवा छोड़ करके अपने सनातन धर्म की जलांजलि देकर के जितने भयंकर पाप और हो सकते हैं इसने सब कुछ किया, कोई बाकी नहीं रखा, इसलिए इसको हम पकड़ कर ले जाएंगे और नरक में डुबाएंगे। विष्णु के दूतों ने कहा अरे धर्म का तुम्हें तो ज्ञान नहीं, अब धर्मवीर बन रहे, तुमने देखा नहीं ये अंतिम समय में मरते समय में इसने नारायण नाम उच्चारण किया, बस एक नाम समस्त पापों को जला देने के लिए काफी है, जितने जगत में पाप हो सकते हैं समस्त पापों को क्षण मात्र में जलाने वाला भगवान का नाम है। योग से नहीं होगा, तपस्या से नहीं होगा, संसार के किसी दान पुण्य इत्यादि से नहीं होगा, यहां तक कि ज्ञानी लोग अम ब्रह्मास्मि करके बहुत ऊपर तक उठ जाने पर भी, मुक्त हो जाने पर भी उनको अपना प्रारब्ध कर्म का फल भोग करना पड़ता है, किंतु भक्तों को नहीं जो भगवान का नाम लेते हैं। पापी होने पर भी जैसे आजामिल था, उन्होंने अपने बल से उनको परास्त कर और वहां से खदेड़ दिया। ये लोग दौड़ करके गए जम महाराज के पास में, बोले आपका भी कोई प्रभु है, मैं नहीं जानता, हम लोग नहीं जानते। हाँ हमारा प्रभु एक और है, कौन है, भगवान है कृष्ण, मैं उनका छोटा सा सेवक हूं, मैं मालिक नहीं। यदि कोई भगवान का नाम ले उस समय मत जाना, तुलसी यदि भगवान को अर्पित यदि कभी कर दिया मरते समय तुलसी उसको दे दिया गंगा जल मत जाना, गले में तुलसी की माला देखना खबरदार मत जाना उसकी सीमा में, विवश होकर के भी यदि कोई राम कृष्ण इत्यादि नाम कर दिया या अंत में हमको प्रणाम कर लिया, ऐसे ही हाथ नहीं जोड़ सका ऐसे ही प्रणाम कर लिया, मनी मन में प्रणाम कर लिया, तो भी इसका महत्व इतना है कि कोटि कोटि यज्ञों से भी इसका फल बहुत बड़ा है। इसलिए इन चीजों को हम लोग याद रखें, कभी कोई कुकर्म ना करें, माता पिता का आदर भी करें, गुरुजनों का आदर करें, लोगों का भी आदर करें, किंतु कृष्ण का भगवान का भजन करना मत छोड़े, राम का भजन करना मत छोड़े, नारायण का भजन करना मत छोड़े। और इन समस्तों में ये समझिए गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम किंचित् नास्ति धनंजय, हमसे बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है, मैं समस्त भगवत्ता का सार वेदों का भी प्रतिपाद्य हूं, वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, सारे वेद हमारे लिए ही हमारी महिमा का गान करते हैं। इसलिए कृष्ण छोटे से बांसुरी वाले ब्रज में नंद बाबा के घर में जन्म लेने वाले जसोदा मैया के गर्भ से, इनको साधारण छोटा मत समझना। इसलिए कली काल में केवल भगवान का नाम कृष्ण का नाम यदि जप किया जाए स्मरण किया जाए उसके सारे पाप दूर हो जाए, उसका ज्ञान का विकास होगा, संतों का संग होगा और उसके द्वारा हम भगवान को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है और सब योग ही, समय नहीं है इस जीवन में हमें करने का, एक योग में ही मन को स्थिर करने में ही लाखों जन्म लग जाएंगे, इसलिए उधर में न जाकर के अपने कर्मों में रहते हुए भी भगवान का नाम करें। और वही नाम का कली काल में कली संतरण उपनिषद का ये मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम,
ये सबसे सरल सहज सीधा। इसका कीर्तन करना भी बड़ा सहज है, ताली बजाते हुए, नई ताली बजाते हुए, सुस्वर से हो, नई स्वर है, जैसे तैसे निकलता है, अकेले दुखेले जैसे भी इसका नाम, दिन में रात में नहीं हो, जैसे भी करो। एक छोटी सी लघु कथा कह करके मैं अपना वक्तव्य आज का समाप्त करूंगा। एक तेली था और वो तेल पेरता था, तेल पेरना जानते हैं आप लोग, खुल्लू में, पहले आजकल नहीं, आजकल तो मशीन से तेल निकलने लगे। वो बैल के आंखों पर थूली देकर और कुल्हू में तेल पड़ता था और दिन भर बैल को हांकता था, हट हट हट, चल चल चल, और उसी पर बैठ करके तेल, कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता, दिन भर उसी में लगा रहता। जैसे हम लोगों को समय नहीं मिलता भगवान का नाम करने के लिए, बहुत सौभाग्य वाली जो व्यक्ति है वो कभी कभी ले लेते, तो वो ऐसे करता रहता था। नारद एक दिन उसके पास में आए, बोले तू भगवान का कभी भी नाम नहीं करता, तेरी क्या गति हो, नरक में जाएगा। उसने कहा कि मुझे समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता ठीक, टटी जाता है उस समय में, तू क्या करता है, और तो उस समय कुछ नहीं करता, तो उस समय करो, और तो उस समय करने से होगा तो जरूर होगा। वो शाम को टट्टी करने गया और वो बैठ करके टट्टी कर रहा और उसमें राम राम करने लगा, तो जहां राम नाम होगा वहां पर हनुमान जी जरूर आते हैं, ये निश्चित रूप है। लाखों कान और लाखों उनके शरीर धारण करके जहां जहां जो जो राम करता है वहां पर जो गया, तो जब वो राम राम करना आरंभ किया अपवित्र अवस्था में, उस समय में हनुमान जी पहुंचे, देखा जैसे ये गंदा होकर के टट्टी करते समय भगवान का नाम करता, पवित्र होकर के नहीं, उन्होंने एक लात मारी, जिस लात से रावण गिर गया, कुंभकर्ण गिर गया,
मेघनाथ
भी गिर गए, और इस तेली को छोटा सा कलयुगी जीव दुर्बल, इसको कुछ नहीं हुआ। तो वो जरा चकित होकर के देखने लगे, ये मैंने इतने जोर से लात मारी और ये मरा नहीं और गिरा नहीं, कुछ चिंतित करते हुए, और वो आसानी से वो गिरा फिरा कुछ नहीं, वो राम राम करता हुआ फिर हम शौच उच कर करके फिर चला गया। शाम को जब ये अयोध्या में पहुंचे राम के घर पर,
हनुमान जी,
तो वहां पर देखा जे रामचंद्र जी भीतर में बैठे हुए ऊं आ कर रहे। हनुमान ने पूछा जी प्रभु आज आपको कोई चोट लगी या क्या बात है जो आप ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्ही ने लात मारी और फिर पूछ रहा है जैसे ये कैसे चोट लगी, तो मैंने कब आपको चोट मारी। तो जब वो तेली नाम कर रहा था तो जाओ नाम करता है, नाम में और हम में कोई अंतर नहीं, दोनों एक अभिन्न है। तो जिस समय वो तेली नाम कर रहा था मैं खुद ही वहां पर था उसके अंदर, इसलिए जो तुमने लात मारी वो हमारे पीठ पर आई, उसको नहीं लगी, इसलिए मैं कराह रहा। तात्पर्य क्या, किसी समय भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम किया जा सकता है, और यदि पवित्र होकर के किया जाए तो इसमें कहना ही क्या, और यदि गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम हो और साधु संघ में वो मार्जित हुआ हुआ नाम हो तो क्षण मात्र में भगवान की प्राप्ति करा देता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। एक व्याज महादुराचारी और सीधा नाम नहीं जप सकता। नारद जी ने कहा जी उल्टा ही करो, मरा मरा करता है तो हाँ करता हूं, तो मरा मरा कर, तो मरा मरा राम राम हो गया, और उससे ऐसे ब्रह्मर्षि बने जो जगत को पवित्र करने वाले। रामलीला के पहले ही राम का ये सब कथाएं लिख दी। अगस्त जी राम नाम के बल पर पानी उठाया समुद्र का, समुद्र का सारा पानी पी गए, सूख गया। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए हम लोग सब काम कीजिए, भगवान का नाम मत कभी भूलिए, अंततः सवेरे प्रणाम करके चलिए भगवान का नाम लेकर के। 5 मिनट बैठो, यही केवल संसार से तरने का उपाय है, दूसरा नहीं। और नहीं तो बुढ़ापा आ रही है, कुछ दिन के बाद दांत टूटेंगे, ये समझो जो पहली घंटी बजी, केश पकने लगेंगे, समझो कि ये दूसरी घंटी आंख से कम दिखाई, तीसरी घंटी, और इसके बाद में बस कब चले जाएंगे कोई पता नहीं, कहां जाना है कोई ठीक नहीं। परीक्षित महाराज जी के लिए 7 दिन था, हमारे लिए कोई दिन स्थिर नहीं। इसलिए प्यारे बंधुओं, अभी से चेत करके, मनुष्य जन बड़े 84 लाख जन्मों के बाद में ये मिला है, इसके बाद में न जाने क्या होगा। इसलिए इसी जन्म में चेत करके, आत्मा का अनुभव करके, किसी उचित योग्य तत्वविद गुरु से भगवान मंत्र इत्यादि लेकर के, और बस सरल सहज रूप में भगवान ये संसार को पार कर जाए। इससे बढ़कर के कलयुग में और कोई उपाय नहीं है हरिनाम से। इसलिए आज यही तक रहे, शाम को हम लोग गुप्ता जी के घर पर श्रीमद भागवत की कथाएं बड़ी सुंदर रसीली हम लोग सुनाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, ये भी निवेदन करेंगे, आप लोग वहां पर 6 बजे से 8 बजे का समय हमें 7 दिन के लिए दें, 6 दिन के लिए वहां पर आपको